लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थिक याचना करते हैं कि रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमता की प्रगति सदैव मानव जाति की सेवा में हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन प्रेरितिक निवास की पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. I primi passi della Chiesa nel mondo sono stati scanditi dalla preghiera.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। दुनिया में कलीसिया के पहले कदम प्रार्थना थे। प्रेरित चरित्र के लेखों और प्रेरितों के कार्यों में हम कलीसिया की क्रियाशील छवि को पाते हैं जो प्रेरितिक कार्य का जिक्र करता है। यरूशलेम का प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय हमारे लिए अन्य दूसरे ख्रिस्तियों के अनुभवों का संदर्भ प्रस्तुत करता है। संत लूकस प्रेरित चरित्र में लिखते हैं, वे दत्तचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाहन में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। संत पापा ने कहा कि हम यहाँ कलीसियाई जीवन की चार विशेषताओं को पाते हैं। पहला, प्रेरितों की शिक्षा को सुनना। दूसरा, समुदाय की देखभाल करना। तीसरा, रोटी तोड़ना। और चौथा, प्रार्थना करना। ये हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि कलीसियाई जीवन का सार अर्थपूर्ण तब होता है जब हम प्रार्थना में यीशु के संग सुदृढ़ बने रहते हैं। उपदेश और धर्म शिक्षा हमें गुरु के कार्यों का साक्ष्य देते हैं, जहां हम भ्रातृत्व में एकता में बने रहते हुए अपने स्वार्थ और विशेषवाद से ऊपर उठते हैं। रोटी तोड़ना हमें अपने बीच में यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। वे हमसे दूर कभी नहीं जाते हैं, बल्कि वे हमारे बीच रहते और हमारे साथ चलते हैं। वही प्रार्थना हमें पिता संग वार्ता के अवसर प्रदान करती है जो यीशु ख्रिस्त में पवित्र आत्मा के माध्यम होता है। कलीसिया में यदि चीजें इन चार बातों के बाहर विकसित होती तो वे अपने में निराधार होती हैं। संत पापा ने कहा कि हम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को चार बातों, धर्म शिक्षा, भ्रातृत्व में एकता की निरंतर खोज, रोटी तोड़ना अर्थात यूखरिस्तीय जीवन और प्रार्थना के आधार पर परख सकते हैं। वे परिस्थितियां जहां इन चार बातों का अनुपालन नहीं होता तो वे अपने में कलीसियाई जीवन के बाहर हैं।
Dio che fa la chiesa, non il clamore delle opere.
यह ईश्वर हैं जो कलीसिया का निर्माण करते हैं, न कि हमारे कार्यों का कोलाहल। संत पापा ने कहा, संत पापा ने कलीसिया के संबंध में अपने विचारों को स्वतः घोषित करते हुए कहा कि कलीसिया कोई बाजार नहीं है और न ही उद्यमियों का कोई समूह जो नया कार्य करने हेतु आगे आता हो। कलीसिया पवित्र आत्मा का कार्य है जिसे यीशु हमें संग्रहित करने हेतु भेजते हैं। यह ख्रिस्तीय समुदाय ख्रिस्तीय जीवन में यूखरिस्त और प्रार्थना में सदैव पवित्र आत्मा के कार्य हैं। वे चीजें जो इनके बाहर होती हैं, बालू में बनाए गए घर के समान है। यीशु ख्रिस्त के वचन हमारी मेहनत को शक्ति से भरते और हमें अर्थपूर्ण बनाते हैं। हम नम्रता में विश्व का भविष्य तैयार करते हैं। संत पापा ने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे कभी कभी दुख का अनुभव होता है जब मैं यह देखता हूँ कि कुछ समुदाय नेक विचारों के होते हुए भी अपने में गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वे कलीसिया को एक राजनीतिक दल स्वरूप लेते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह धर्म सभा की प्रक्रिया समान होती है, मगर मैं अपने में पूछता हूँ, पवित्र आत्मा का स्थान कहाँ है? इस प्रक्रिया में प्रार्थना का स्थान कहाँ है? समुदाय के प्रति प्रेम कहाँ है? यूखरिस्तीय बलिदान कहाँ है? इन चार बातों की अनुपस्थिति में कलीसिया एक मानव समाज है, एक राजनीतिक दल, जहाँ हम बहुमत के हिसाब से चीजों में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ है?
Per valutare una situazione, se è ecclesiale o non è ecclesiale, domandiamoci su queste quattro coordinate.
संत पापा ने किसी भी कार्य के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त चार बातों पर बल दिया। यदि चारों में किसी एक की कमी है तो हम सुंदर मानवीय संघ हो सकते हैं, लेकिन निश्चित ही कलीसिया नहीं। ऐसी स्थिति के कारण ही कलीसिया में विकास नहीं होता है। हम किसी कंपनी की भांति दूसरों में परिवर्तन नहीं ला सकते, बल्कि यह पवित्र आत्मा है जो दूसरों को हमारी ओर आकर्षित करता है। संत पापा ने बेनेडिक्ट 16वें के कथनों की याद दिलाते हुए कहा, कलीसिया का विकास धर्म परिवर्तन में नहीं वरन आकर्षण में होता है। यदि हम पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति पाते जो यीशु ख्रिस्त में होता है, तो वहाँ कलीसिया नहीं है। यह मित्रों का संघ हो सकता है जिनके उद्देश्य नेक हों, परंतु कलीसिया नहीं। प्रेरित चरित का पठन पाठन हमें प्रार्थना में समुदाय द्वारा शक्तिशाली सुसमाचार घोषणा को दिखलाता है, जहां समुदाय में सहभागी हो रहे लोग सचमुच में यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव करते और पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। प्रथम ख्रिस्तियों का समुदाय यीशु के स्वर्ग रोहण की घटना तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह निरंतर उनके जीवन में बना रहा। वे यीशु ख्रिस्त की बातों को, जिन्हें उन्होंने सुना था, प्रार्थना के माध्यम उनकी एकता में प्रवेश करते थे और सारी चीजें उनके लिए नई हो जाती थीं।
La preghiera infonde luce e calore. Il dono dello spirito fa nascere in loro il fervore.
प्रार्थना उन्हें दिव्य ज्योति और जोश से भर देती थी, जहां वे पवित्र आत्मा के उपहार को प्राप्त करते थे। यही कारण है कि कलीसियाई धर्म शिक्षा ठोस रूप में इस बात को व्यक्त करती है। पवित्र आत्मा कलीसिया की प्रार्थना में यीशु की यादगारी को सजीव बनाते, साथ ही उसे पूर्ण सच्चाई की ओर ले चलते और ख्रिस्त के अथह रहस्यों को कलीसियाई जीवन, संस्कारों और प्रेरितिक कामों में व्यक्त करते हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया में हमें यीशु की याद दिलाते हैं। ख्रिस्तियों के रूप में प्रेरिताई के मार्ग में चलते हुए हम पुनः यीशु की याद करते और पवित्र आत्मा से प्रेरित आगे बढ़ते हुए सेवा कार्यों में उन्हें घोषित करते हैं। प्रार्थना में ख्रिस्तीय अपने को यीशु ख्रिस्त के रहस्य में डुबोते, जो हर एक को प्रेम करते और सुसमाचार को सबके लिए प्रसारित करने की चाह रखते हैं। यीशु ख्रिस्त सबों के लिए हैं और उनमें हर अलगाव हमसे दूर है, जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, वे हमारी शांति हैं। इस तरह प्रारंभिक कलीसिया के जीवन में निरंतर उत्सव, समारोह, सामुदायिक मिलन और व्यक्तिगत प्रार्थना के समय का एक निरंतर लय था। यह पवित्र आत्मा था जिन्होंने उपदेशकों को अपनी शक्ति से भर दिया, जो यीशु ख्रिस्त के प्रेम में अपनी समुद्री यात्रा की, खतरों का सामना किया और अपमान के शिकार हुए। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Dio dona amore, Dio chiede amore. E questa è la radice mistica di tutta la vita credente.
ईश्वर हमें प्रेम करते और प्रेम की मांग करते हैं। यह विश्वासियों के पूरे जीवन का रहस्यात्मक आधार है। प्रार्थना में हम प्रथम ख्रिस्तियों की तरह ही सदियों के उपरांत भी उन्हीं अनुभवों से रूबरू होते हैं। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए सारी चीजों को करते हैं। हर ख्रिस्तीय जो प्रार्थना करने हेतु अपना समय देने से नहीं डरता, प्रेरित संत पौलुस की बातों को उद्घोषित कर सकता है, मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। अपने जीवन के शांतिमय स्थिति में हम इस सच्चाई को अनुभव करते हैं। हम अपने हृदय की गहराई में त्रित्व में ईश्वर की आराधना करें। हमारी शांतिमय प्रार्थना हमें ईश्वर को जानने में मदद करती है, जो सभी चीजों की शुरुआत और अंत है।
Che dà forza alla testimonianza e alla missione.
यह पवित्र आत्मा की दिव्य ज्योति है जो साक्ष्य और प्रेरिताई हेतु हमें ताकत प्रदान करती है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व में आज भी बहुत सारी महिला हिंसा के शिकार हो रही हैं और उनमें से अधिकांश उससे चुपचाप सह लेती हैं। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दूर करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा का विरोध किया है और महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने 25 नवंबर को एक ट्वीट प्रकाशित कर कहा है, बहुधा महिलाएं अपमान, मारपीट, बलात्कार, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूरी की शिकार होती हैं। यदि हम बेहतर विश्व की कामना करते हैं जो शांति का घर हो और युद्ध का प्रांगण ना हो, तब हम सभी को हर एक महिला की प्रतिष्ठा के लिए बहुत कुछ करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार करीब एक तिहाई महिलाओं को अपने पुरुष साथी से शारीरिक अथवा यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। हालांकि एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि 30 देशों के आंकड़े से संकेत मिलता है कि केवल 1% महिलाएं ही न्यायिक मदद की मांग करती हैं। मानव सुनिदा संगठन ने सियेरा लियोन में एक योजना के द्वारा उदाहरण पेश किया है जहां महिलाएं और लड़कियां बहुत अधिक हिंसा से मौन और आर्थिक समस्या के शिकार होती हैं। फादर कोंतेह ने कहा कि मानस उनिदास की मदद से स्थानीय कारितास मौन की संस्कृति का सामना करने में सक्षम रही है जो पीड़ितों को अधिकारियों के सामने जाने से रोक देती थी। उन्होंने कहा, अब महिलाएं, लड़कियां और परिवारों में शोषण के बारे खुलकर बातें हो रही हैं और दोषियों को न्याय के लिए सामने लाया जा रहा है। वैटिकन ने पुष्टि दी है कि नामित कार्डिनलों में से 2 कार्डिनल शनिवार को संत पापा फ्रांसिस से कार्डिनल के विशेष चिन्ह स्वरूप लाल टोपी को ग्रहण करने रोम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कोरोना वायरस लोकसभा परिषद को नहीं रोक पाएगी किंतु इसके कार्य प्रणाली को बदल देगी। इतिहास में पहली बार होगा कि 28 नवंबर 2020 को संत पापा फ्रांसिस द्वारा नवनियुक्त सभी कार्डिनल व्यक्तिगत रूप से अपनी लाल टोपी ग्रहण करने के लिए रोम नहीं आ पाएंगे। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मातेओ ब्रूनी ने सोमवार को कहा कि ब्रुनेई के प्रेरितिक विकट नवनियुक्त कार्डिनल कॉर्नेलियस सिम और फिलीपींस के नवनियुक्त कार्डिनल जोसेफ एफ एडविन कुला वैटिकन में कार्डिनल बनने के समारोह में भाग नहीं ले पाएंगे। इसका मूल कारण है कोरोना वायरस के कारण यात्रा में प्रतिबंध। वे अपने धर्म प्रांत से ही डिजिटल माध्यम के द्वारा संत पेत्रुस महागिरजा घर में होने वाले समारोह में भाग लेंगे। प्रेस कार्यालय के निदेशक ने बतलाया कि संत पापा फ्रांसिस के एक प्रतिनिधि उनके लिए लाल टोपी, कार्डिनल की अंगूठी और रोम की एक पल्ली प्रदान करने की विधि संपन्न करेंगे। इसके लिए समय बाद में निश्चित किया जाएगा। कार्डिनल बनने का समारोह शनिवार को दोपहर में संत पेट्रस महागिरजाघर में संपन्न होगा, जहां विश्वासियों की बहुत कम संख्या होगी। ससम्मान सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के भूतपूर्व नौकर पाओलो गब्रिएले का निधन मंगलवार को एक लंबी बीमारी के बाद हुआ। उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ दिया। वे 54 साल के थे। पोप के परिवार के सदस्य के समान परमधम पीठ की कई सालों तक सेवा करने के बाद पाओलो गब्रिएले पहले वैटिलिक्स के दोषी बने थे, जिसमें गोपनीय दस्तावेज की चोरी की गई थी और बाद में उसे एक किताब में प्रकाशित किया गया था। उनकी जांच की गई थी और वे 2012 में वैटिकन राज्य की अदालत द्वारा दोषी पाए गए थे। उसके बाद उन्हें जेल में रखा गया था। उसी साल के 22 दिसंबर को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें आधिकारिक रूप से माफ कर दिया था। उधर मध्य पूर्व के लिए कलीसियाओं की परिषद ने एक वक्तव्य जारी कर आर्मेनिया और अजरबैजान साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों का आह्वान किया है कि वे विवादित नगोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए हाल में जारी संघर्ष विराम को सुनिश्चित करें। मध्य पूर्व के लिए कलीसियाओं की परिषद ने वक्तव्य में कहा है कि 10 नवंबर का समझौता, जिसने नगोर्नो काराबाख में खूनी सशस्त्र संघर्ष को विराम दिया, क्षेत्र में स्पष्ट, सतत और दीर्घकालीन शांति सुनिश्चित नहीं की है। मध्य पूर्व के लिए कलीसियाओं की परिषद की स्थापना 1974 में हुई है, जिसका उद्देश्य है सामान्य हित के मुद्दों एवं समुदायों के बीच तनाव से ऊपर उठने में मदद करते हुए मध्य पूर्व में ख्रिस्ती समुदायों की एकता को बढ़ावा देना। संगठन में करीब 30 ख्रिस्ती समुदाय हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, पूर्वी ऑर्थोडॉक्स और एवेंजेलिकल कलीसियाएं करते हैं। मध्य पूर्व के लिए कलीसियाओं के परिषद ने रूस ब्रोकेट समझौते का वर्णन किया, जो अधिक टिकाऊ शांति स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय आधार के बिना तनावपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए एक ढीली व्यवस्था की है। विश्वास आधारित संगठन के रूप में अपनी पहचान को पुष्ट करते हुए मेल मिलाप के मिशन के साथ MACC ने युद्धरत लोगों, दलों और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों का आह्वान किया है कि वे वार्ता के द्वारा एक साथ आएं और सबसे पहले युद्ध विराम की गारंटी सुनिश्चित करें, ताकि खतरा से हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। चीन में नए धर्माध्यक्ष थॉमस चेन तियानहाओ की नियुक्ति परमधम पीठ एवं चीन के बीच अनंतिम समझौता के ढांचे पर हुई। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने 24 नवंबर को एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि दी। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने 24 नवंबर को पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए कहा, परमधम पीठ एवं चीन के बीच अनंतिम समझौता फल ला रहा है। 2018 में समझौता पर हस्ताक्षर के बाद अब तीसरे नए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जो संत पेट्रस के उत्तराधिकारी की एकता में नियुक्त और अभिषिक्त है। उन्होंने कहा, मैं इस बात की पुष्टि देता हूं कि माननीय थॉमस चेन तीसरे धर्माध्यक्ष हैं, जिनकी नियुक्ति और अभिषेक परमधम पीठ एवं चीन के बीच धर्माध्यक्षों की नियुक्ति पर अनंतिम समझौते के ढांचे पर हुई है। ब्रूनी ने कहा कि निश्चय ही भविष्य में अन्य धर्माध्यक्ष अभिषेक की उम्मीद है, क्योंकि नए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की कई प्रक्रियाएं जारी हैं। परमधम पीठ और चीन के बीच अनंतिम समझौते की पहली अवधि समाप्त होने पर सितंबर के अंत में इसे फिर नवीकृत किया गया है। इससे पुनः 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। यह सीधे तौर पर परमधम पीठ और चीन के बीच राजनयिक संबंध का मामला नहीं है, न ही चीन की कार्तिक कलीसिया की नैतिक स्थिति अथवा देश के अधिकारियों के साथ याचकों के संबंध से जुड़ा है। अनंतिम समझौता खासकर धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है, जो कलीसिया के जीवन और चीन की कार्तिक कलीसिया का रोम के धर्माध्यक्ष एवं विश्व के धर्माध्यक्षों की एकता के लिए आवश्यक है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।